आज हेत्वाभास की चर्चा होगी, जो विषय पहले से आपको परिचित है, इसलिए मैं केवल पंक्त्यर्थ बताता चलूंगा, बहुत व्याख्यान नहीं करूंगा। और आप लोग जो है केवल पंक्ति को देखते रहिए और मेरी बात को सुनते रहिए, पंक्ति लग जाएगी। आगे कहते हैं कि उक्तानाम पक्ष धर्मत्वादि रूपानाम मध्ये येन केनापि रूपेन हीनाः अहेतवः। उक्त माने पहले जो पक्ष धर्मता इत्यादि बताया गया है, पक्ष धर्मता इत्यादि में हम पांच ले लेंगे, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्षा सत्व, अबाधित साध्यकत्व और असत प्रतिपक्षत्व। ये जो पांच हैं इसी को पक्ष धर्मत्वादि रूप कहा। तो ये जो पांच प्रकार के हैं इनके बीच में ये न केनापि रूपेण, जिस किसी से हीन जो होगा हेतु, वह अहेतवः, वह अहेतु कहलाएगा। तेपि कतिपय हेतु रूप योगात हेतुवत आभास मानाः हेत्वाभासः। और इस तरह का जो अहेतु होता है, जिस अहेतु में कि इन पांचों में से कोई भी हीन हो, या तो पांचों न हो, या कोई एक न हो, या दो न हो, तो उस तरह का जो हेतु है तेपि, वह जो हेतु है अहेतु है, वे कतिपय हेतु रूप योगात, उस अहेतु में भी कतिपय हेतु का योग रहता है, इसलिए हेतुवत आभास माना है। अहेतु भी हेतु की तरह आभासमान होता है, और इस तरह से जो अहेतु हेतु की तरह आभासित हो, उस अहेतु को हम हेत्वाभासः हेत्वाभास कहते हैं। ते च वो पांच प्रकार के होते हैं हेत्वाभास, ते असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरण सम कालात्यय अपदिष्ट भेदात पंचेव। माने असिद्ध नाम का हेत्वाभास, विरुद्ध नाम का हेत्वाभास, अनेकांतिक नाम का हेत्वाभास, प्रकरण सम नाम का हेत्वाभास और कालात्यापदिष्ट नाम का हेत्वाभास, इस तरह से पांच प्रकार के हेत्वाभास होते हैं। अत्र उदयनेन, उदयनाचार्य बहुत बड़े नैयायिक रहे हैं, प्राचीन नैयायिकों में ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो उदयनाचार्य ने कहा है कि व्याप्तस्य हेतोः पक्ष धर्मतया प्रतीति सिद्धिः तदभावः असिद्धिः इति असिद्धि लक्षणम् उक्तम्। ये जो असिद्ध हेत्वाभास, पहला जो भेद है हेत्वाभास का, असिद्ध हेत्वाभास मतलब जिस हेतु में, जिस अहेतु में असिद्धि हो, उसको कहेंगे असिद्ध हेत्वाभास। तो असिद्धि का लक्षण उदयनाचार्य ने बताया है कि व्याप्तस्य, व्याप्तस्य मतलब साध्य व्याप्ति विशिष्टस्य, साध्य के साथ जो व्याप्ति है, उस व्याप्ति से जो युक्त हेतु है, वह हो गया व्याप्तस्य हेतु हो। तो साध्य व्याप्ति से युक्त जो हेतु, उस हेतु का पक्ष धर्मतया प्रतीति, पक्ष धर्म के रूप में जो प्रतीति है, ज्ञान है, उसको हम सिद्धि कहते हैं। अतत अभाव असिद्धि, और उस प्रतीति का जहाँ अभाव हो, माने व्याप्ति विशिष्ट, साध्य व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्ष धर्मता के रूप में जहाँ पर अप्रतीति हो, प्रतीति न हो, उस अभाव को, उस अप्रतीति को हम असिद्धि कहते हैं। इति असिद्धि लक्षणम उक्तम। तच्च माने वह जो असिद्धि का लक्षण है क्या, व्याप्तस्य हेतु हो पक्ष धर्मतया प्रतीति सिद्धि तदभाव असिद्धि, इस तरह का जो लक्षण है असिद्धि का, वह लक्षण यद्यपि विरुद्ध आदिशु अपि संभवति, यद्यपि विरुद्ध आदि जो हेत्वाभास हैं उसमें भी संभावना है, उसमें भी ये चीजें होती हैं, फिर भी संभवति इति सांकर्जम प्रतीत, इसलिए सांकर्ज की प्रतीत होती है। सांकर्ज की प्रतीति का मतलब एक में जो है ना दो तरह के भाव अगर जो है ना प्रतीत हो, तो उसको सांकर्ज प्रतीति कहते हैं। अब जैसे एक हेत्वाभास है असिद्ध, दूसरा हेत्वाभास है विरुद्ध, और दोनों में जो है अगर व्याप्तस्य हेतु पक्ष धर्मतया अप्रतीति ही अगर हो तो सांकर्ज हो जाएगा ना, क्योंकि दो विरुद्ध हैं, दो अलग अलग हैं, और उनमें एक तरह का अगर एक तरह की प्रतीति होगी तो उसकी का नाम है सांकर्ज प्रतीति। तो सांकर्ज प्रतीति होती है, तथापि यथा न सांकर्जम तथा उचिते, फिर भी जैसे वहाँ सांकर्ज नहीं होता है वो ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। असल में सांकर्ज जो है ना दोष माना जाता है, तो सांकर्ज दोष होना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर सांकर्ज की प्रतीति होती है क्योंकि व्याप्त से हेतु तो पक्ष धर्मतया अप्रतीति रूप जो है उसकी प्रतीति असिद्ध में और विरुद्ध में दोनों आदि अनेकांतिक सम में भी होता है इस तरह की प्रतीति। तो सांकर्ज नाम का दोष आया, उस दोष का निवारण केशव मिश्र कर रहे हैं कि यो ही यत्र साधने पूरा परिस्फुरति, ताकि जहाँ पर जिस चीज का साधन करना हो उसमें पूरा परिस्फुरति, जो जिसका पहले परिस्फुरन होता है माने जो पहले सामने आता है समर्थश्च और वह साधन करने में समर्थ है, दुष्ट ज्ञप्तौ माने दुष्ट की ज्ञप्ति में, दुष्ट के ज्ञान में जो सबसे पहले जो है परिस्फुरित होता है, स एव दुष्ट ज्ञप्ति कारक, वही जो है दुष्ट ज्ञप्ति का कारक माना जाता है। बाद में जो परिस्फुरन होता है वह दुष्ट ज्ञप्ति का कारक नहीं होता है। तो वही कहा कि यो ही यत्र साधने पूरा परिस्फुरति, जो जिसके साधन में पहले परिस्फुरित होता है और वही जो है पहले परिस्फुरित होने वाला दुष्ट ज्ञप्ति में समर्थ होता है माने दुष्ट ज्ञप्ति का कारक होता है, उसी को दूषणम इति यावत, उसी को हम दूषण कहते हैं, नान्यः अन्य को दूषण नहीं कहते हैं माने बाद में परिस्फुरन होने वाले को हम दूषण नहीं कहते। तेनैव पूरा अवस्फूर्ति के न दुष्टो ज्ञापितायाम, क्योंकि पहले जो स्फूर्ति हुई है उसी स्फूर्ति से दुष्ट ज्ञप्ति हो गई मन दुष्ट का ज्ञान हो गया, तो फिर कथा पर जब साने जाते तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया वहीं पर, क्योंकि दुष्ट ज्ञप्ति हो गई, दुष्ट का ज्ञान हो गया पहले वाले परिस्फुरित से, तो उससे जो है कथा का प्रजवसान होता है, फिर तदुपजीविन अन्यस्य अनुपयोगात, फिर उसके बाद अगर फिर कुछ स्फूर्त होता भी है तो वह अनुपयोगी है, उससे कोई जो है ना फर्क नहीं पड़ता है। तथा च सति, इस तरह से यत्र विरोधः साध्य विपर्जय व्याप्त्याख्यः, कि जहाँ पर विरोध जो है वो साध्य विपर्जय व्याप्ति नाम का विरोध होता है, साध्य विपर्जय व्याप्ति, विपर्जय माने विपरीत, साध्य से विपरीत व्याप्ति नाम का जहाँ पर विरोध होता है वह दुष्ट ज्ञप्ति कारक सएव विरुद्धो हेत्वाभास, वही जो है वहाँ पर दुष्ट ज्ञप्ति कारक होगा, दुष्ट ज्ञप्ति कारक माना जाएगा, वही जो है विरुद्ध हेत्वाभास कहलाएगा। एवं यत्र व्यभिचारादय तथा भूता ते अनेकांतिकास्तयः, इस तरह से जो व्यभिचार आदि जो है दोष वो जहाँ होते हैं वहाँ पर अनेकांतिक आदि जो है तीन माने अनेकांतिक हेत्वाभास, प्रकरण सम हेत्वाभास और कालातयापदिष्ट हेत्वाभास, ये तीनों हेत्वाभास वहाँ पर माने जाते हैं। तो इस तरह से सांकर्ज का वारण इन्होंने कैसे किया, कहा कि जैसे पहले जिसकी स्फूर्ति होगी ना वही वहाँ पर दुष्ट ज्ञप्ति कारक माना जाएगा, बाद वाले को दुष्ट ज्ञप्ति कारक नहीं माना जाएगा। जब दोनों दुष्ट ज्ञप्ति कारक होते ना तो सांकर्ज नाम का दोष होता, क्योंकि एक को ही हम दुष्ट ज्ञप्ति कारक मानते हैं पूरा स्फूर्ति वाले को, इसलिए सांकर्ज नाम का दोष नहीं है। आगे फिर ये पुनः व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्ट हेतुत्व प्रज्ञप्ति अभावेन पूर्वोक्ता असिद्ध्यादयो दुष्ट ज्ञप्ति कारका दूषणानि इति यावत्, ताकि जहाँ पर पुनः ये व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्ट हेतुत्व इसका जो है ना प्रज्ञप्ति का अभाव होता है और पूर्वोक्ता असिद्ध्यादय, वहाँ पर पूर्वोक्त जो असिद्धि आदि जो दुष्ट ज्ञप्ति कारक हैं वही दूषण माने जाते हैं, तथा भूतः स असिद्ध और वहाँ पर असिद्ध नाम का हेत्वाभास माना जाता है। तो इस तरह से जहाँ पर ये साध्य विपर्जय व्याप्त्याख्य दुष्ट ज्ञप्ति कारक होगा पहले, वहाँ पर विरुद्ध हेत्वाभास माना जाएगा, जहाँ पर व्यभिचार आदि पहले होगा वहाँ पर अनेकांतिक आदि हेत्वाभास माना जाएगा, और जहाँ पर पूरा स्फुरन व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्ट हेतुत्व होगा वहाँ पर जो है असिद्ध्यादि को ही जो है ना हेत्वाभास माना जाएगा, दो हेत्वाभास एक जगह इस तरह से नहीं माना जाएगा और सांकर्ज दोष का निराकरण हो जाएगा। इस तरह से असिद्धि का लक्षण बताया और असिद्धि का लक्षण जो विरुद्ध आदि हेत्वाभास में जा रहा था उससे सांकर्ज हो रहा था उसका निवारण किया, और निवारण करने के बाद फिर असिद्ध नाम का जो हेत्वाभास है उसके भेद और उदाहरण बताते हैं। कहते हैं कि सह असिद्धा त्रिविधा, वह जो असिद्ध हेत्वाभास है वो तीन प्रकार का है, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध, व्याप्यत्वासिद्ध भेदात्। आश्रया सिद्ध नाम का, स्वरूपा सिद्ध नाम का और व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का, तीन प्रकार का असिद्ध हेत्वाभास होता है। यस्य हेतो हो आश्रयो न अवगम्यते स आश्रया सिद्ध, जिस हेतु का आश्रय अवगत नहीं होता है, ज्ञात नहीं होता है, वह आश्रया सिद्ध कहलाता है। यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत्, जैसे गगन अरविंदम, गगन माने आकाश, अरविंद माने कमल, माने आकाश कमल फूल, जो आकाश में रहने वाला जो कमल फूल है वह सुरभि माने वह सुगंधित है, क्यों तो अरविंदत्वात्, और उसमें अरविंदत्व होने के कारण सरोज अरविंदवत, सरोज अरविंद की तरह माने जलाशय में जो कमल फूल है उसकी तरह आकाश वाला कमल फूल भी जो है वह सुरभि है, इस तरह का जहाँ पर अनुमान होता है। और इसमें जो हेतु बताया गया है अरविंद, अरविंदत्वात हेतु, ये हेतु नहीं है, ये अहेतु है, ये हेत्वाभास है। अत्र ही गगनारविंदम आश्रय सच नास्त्येव, क्योंकि इस हेतु का जो आश्रय है गगनारविंद वह असिद्ध है, गगनारविंद होता ही नहीं है, तो जहाँ पर आश्रय ही न हो वहाँ का जो हेतु होता है वहाँ उसको हम असिद्ध नाम का हेत्वाभास कहेंगे। कौन सा असिद्ध हेत्वाभास, तो आश्रयासिद्ध हेत्वाभास। अयम अपि आश्रयासिद्ध का कि एक और टाइप होता है आश्रयासिद्ध का, तथा ही घटो नित्य कार्यत्वात् पटवत इति, अगर कोई अनुमान करे कि घट जो है अनित्य है, कार्यत्वात् कार्य होने, कार्यत्व रहने के कारण पटवत पट की तरह, तो यह जो यहाँ पर कार्यत्वात् जो हेतु उपन्यस्त है यह कार्यत्वात् हेतु भी हेत्वाभास आश्रयासिद्ध हेत्वाभास की कोटि में आएगा। आगे कहते हैं कि ननु आश्रयस्य घटादेशत्वात्, कहा कि आश्रया सिद्ध के लिए आपने क्या कहा, जहाँ आश्रय असिद्ध हो वहाँ आश्रया सिद्ध हेतु होता है, यहाँ तो जो है घटो नित्य कार्यत्वात् पटवत में आश्रय जो घट आदि है उसका तो सत्व है, वह तो होता है, वह तो सिद्ध है, और कार्यत्वात् कार्यत्वात् जो है यह हेतु है, तो इस तरह से न आश्रया सिद्ध, यहाँ पर आश्रया सिद्ध जो है हेत्वाभास नहीं माना जानना चाहिए। हाँ, सिद्ध साधक अस्तु स्यात्, ये सिद्ध साधक जरूर होगा हेतु, सिद्ध साधक कहते हैं कि जो बात पहले से सिद्ध हो उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, अगर उसको आप सिद्ध करते हैं तो वह बेकार है, व्यर्थ है। तो यहाँ भी घट जो है अनित्य है ये तो हर कोई व्यक्ति जानता है, इसको अनुमान वाक्य के द्वारा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये सिद्ध साधक जरूर है। वही कहा सिद्ध साधकस्तु स्यात्, सिद्धस्य घट अनित्यत्वस्य साधनात्, यहाँ जो है सिद्ध जो घट है, घट का जो अनित्यत्व सिद्ध है, निश्चित है, उसी का यहाँ पर अनुमान के द्वारा साधन किया गया है। तो इस तरह से आश्रया सिद्धत्व यहाँ पर जो आपने बताया वो नहीं हो करके सिद्ध साधनत्व तो है, यह आपको कहना चाहिए, तो इसको कहते हैं मैवम, ताकि नहीं ऐसा नहीं है, आपका कहना सही नहीं है, क्योंकि नहीं स्वरूपेन कश्चित आश्रयो भवति अनुमानस्य, ताकि केवल स्वरूप रहने से, सत्ता रहने से कोई आश्रय जो है अनुमान का नहीं बन जाता है, किंतु संदिग्ध धर्म धर्म बत्वेव, जब उसका धर्म संदिग्ध हो तभी जो है वह अनुमान का आश्रय होता है। तथा चोक्तम भाष्य, भाष्य में कहा गया कि नानुपलब्धे न निर्णीते अर्थे अपितु संदिग्धे अर्थे न्यायः प्रवर्तते, कहा कि जहाँ पर अर्थ अनुपलब्ध हो, अनुपलब्धे अर्थे आ न निर्णीते अर्थे, आ जहाँ अर्थ निर्णीत न हो बल्कि अर्थ जहाँ संदिग्ध हो वहाँ पर न्याय की प्रवृत्ति होती है, न्याय मतलब अनुमान की प्रवृत्ति होती है। तो अनुमान की प्रवृत्ति होने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो अनुपलब्ध अर्थ चाहिए, नहीं अनुपलब्ध अर्थ होगा तो भी न्याय की प्रवृत्ति नहीं होगी, अच्छा निर्णीत अर्थ होगा तो भी न्याय की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो कहाँ होगी, संदिग्ध अर्थ में न्याय की प्रवृत्ति होगी, जहाँ संदेह होगा कि पर्वत बहनीमान नवा, इस तरह संदेह होगा तो वहाँ पर अनुमान प्रमाण का प्रयोग होगा, और जहाँ पर महानस है उसमें तो निर्णीत है कि महानस बहनीमान, तो वहाँ पर अनुमान की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से जो अनुपलब्ध है, अब जैसे वायु में रूप अनुपलब्ध है तो उसके लिए सिद्ध करने के लिए हमें अनुमान करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से भाष्य में कहा गया कि न अनुपलब्धे न्यायः प्रवर्तते, न निर्णीते अर्थे न्यायः प्रवर्तते, अपितु केवलम संदिग्धे अर्थे एवं न्यायः प्रवर्तते। न च घटे नित्यत्व संदेह अस्ति, यहाँ जो घटो नित्य कार्यत्वात् पटवत ये जो अनुमान का प्रयोग किया गया, इसमें घट में नित्यत्व संदेह न अस्ति, घट में नित्यत्व का संदेह तो है नहीं, अनित्यत्वस्य निश्चितत्वात्, अनित्यत्व ही जो है यहाँ पर पहले से निश्चित है, तेना यद्यपि स्वरूपेन घटो विद्यते, फिर भी तो इसलिए यहाँ पर स्वरूप से घट तो है, घट की सत्ता है, तथापि अनित्यत्व संदेहाभावात् नासो आश्रयः, इस घट में अनित्यत्व का चूंकि संदेह नहीं है इसीलिए यह हेतु का आश्रय यहाँ पर नहीं बनेगा और इस आश्रय को भी असिद्ध माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर आश्रय असिद्ध नाम का हेत्वाभास होगा। तात्पर्य ये है कि आश्रय सिद्ध न हो तो वहाँ पर जो है आश्रय असिद्ध हेत्वाभास होगा, और आश्रय अगर स्वरूप से रहे भी किंतु संदिग्ध न हो तो वहाँ पर भी जो है आश्रय सिद्ध नाम का हेत्वाभास होता है। तो यहाँ जो आश्रय घट है उसमें अनित्यत्व संदेह का अभाव है, वह संदिग्ध आश्रय घट नहीं है, इसलिए यहाँ आश्रय सिद्ध हेत्वाभास माना जाता है। इस तरह से आश्रय सिद्ध की दो प्रकार की कोटि इन्होंने बताई, एक कोटि बताई जिसमें कहा कि गगना अरविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजा अरविंदवत्, इसमें क्या था कि आश्रय जो गगनारविंद है वही असिद्ध है, आकाश में कमल होता ही नहीं है, गगनारविंद होता ही नहीं है, तो वह भी आश्रय असिद्ध हुआ। और घटो नित्य कार्यत्वात् पटवत में जो आश्रय असिद्ध बताया, यहाँ आश्रय जो घट है वह तो है लेकिन वह संदिग्ध अर्थ नहीं है, और जबकि संदिग्ध अर्थ नहीं होने के कारण वहाँ पर भी आश्रय असिद्ध नाम का हेत्वाभास माना जाता है। इस तरह से एक असिद्ध हेत्वाभास की चर्चा अभी करके और इसको कम करते हैं पाठ को, फिर हम पढ़ेंगे अगले भेद को अगले पाठ में।